आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भाईदूज पर्व पर आज मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। और क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच एडिलेड में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा का रिश्ता भाई बहन के प्रेम और संरक्षण की सबसे सुंदर मिसाल है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में बहन सुभद्रा की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा, उसी भावना से हमारी सरकार भी प्रदेश की हर लाडली बहन के सुख, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की साथी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले भाई दूज कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली लाडली बहनों को यह संदेश दिया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि परिवार और समाज की आत्मा है। लाडली बहना योजना ने बहनों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। मध्य प्रदेश में निवेश मित्र नीतियों और उद्योग समर्थित प्रावधानों के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या बढ़कर 4,26,230 तक पहुंच गई है। वर्ष 2022-23 में 67,332 विनिर्माण MSME पंजीकृत हुई थी। 2023-24 में 89,317 और 2024-25 में 113,696 पंजीकृत हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना को हर प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या भी बढ़ रही है। वर्तमान में प्रदेश में 20,43,000 MSME इकाइयां हैं। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परता पूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 1,590,74,00,000 रुपए और वित्त वर्ष 2022-23 में 726,15,00,000 रुपए तथा वित्त वर्ष 2023-24 में 758,62,00,000 रुपए की राहत राशि सरकार द्वारा वितरित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़ एवं पीला मोजेक तथा कीट व्याधि से फसल हानि के लिए 23,81,104 प्रभावित किसानों को 1,623,51,00,000 रुपए की राहत राशि दी गई है। वहीं प्राकृतिक आपदा से हुई विभिन्न प्रकार की क्षतियों की पूर्ति के लिए राहत के रूप में 178,45,00,000 रुपए वितरित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के 4 दिन के दौरे पर हैं। वे आज राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस बारे में और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह केरल राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम के नजदीक वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु समाधि के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। दोपहर में वे सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। कल राष्ट्रपति ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए और बाद में तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर केंद्रीय मंत्री श्री मुरुगन का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने पुष्पगुच्छ तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद देकर और शॉल उड़ाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन ने मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु एवं सेवा कर GST सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है और इससे पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। बुरहानपुर के मनोज कुमार ने GST पर दी गई छूट को लेकर अपने विचार आकाशवाणी से साझा किए हैं।
मैं मनोज कुमार एक उपभोक्ता हूँ। सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती आम लोगों के लिए एक राहत की बात है। पहले जिन वस्तुओं पर 12% टैक्स देना पड़ता था, अब वे 5% पर उपलब्ध हो रही है। इसका सीधा फायदा हमें रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस हो रहा है। घर का बजट पहले की तुलना में थोड़ा हल्का हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि व्यापारी भी अब नई दरों को लेकर पारदर्शी है और उपभोक्ता को वास्तविक बचत का लाभ दे रहे हैं। इससे बाजार में रौनक बढ़ी है और उपभोक्ता का भरोसा भी मजबूत हुआ है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासों से यह संभव हुआ है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधन के दौरान वे व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 का परिदृश्य प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के भावी अभियानों और तैयारियों के बीच इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2014 के 35 गीगावाट की तुलना में 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। बड़े पनबिजली संयंत्र से उत्पादित बिजली इसके अतिरिक्त है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि दर विश्व की सबसे तेज दरों में है। वर्तमान वर्ष में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों ने 5.6 गीगावाट जबकि राज्य एजेंसियों ने 3.5 गीगावाट बिजली खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। भाईदूज के पावन अवसर पर पवित्र तीर्थस्थल केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केदारनाथ धाम में कल संध्या आरती आयोजित की गई। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने की घोषणा की। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से हार के बाद भारत के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। एक दूसरी श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाएंगे। वहीं बहरीन में तीसरे एशियाई युवा खेलों में कल भारत ने कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में मेजबान बहरीन को 84-40 से हरा दिया। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर है और उसने फाइनल मुकाबले के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को भी 81-26 से शिकस्त दी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवम्बर को मतदान होगा। अशोकनगर कलेक्टर के निर्देश पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। छठ महापर्व का शुभारंभ इस वर्ष 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए के साथ होगा। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद तीसरे दिन 27 अक्टूबर को श्रद्धालु तालाबों और जलाशयों में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। महापर्व का समापन 28 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। 69वीं राज्य स्तरीय शालेय कुश्ती प्रतियोगिता गुरुवार 23 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को दोपहर 3 बजे कुश्ती अरीना क्षीरसागर पर होगा। शिवपुरी में आज भाईदूज के दिन सर्किल जेल शिवपुरी एवं अधीनस्थ जेलों में बंदियों की अपने परिजनों से मुलाकात की विशेष व्यवस्था की गई है। और खंडवा के महालक्ष्मी मंदिर और आगरमालवा में आज भाईदूज और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाईदूज पर्व पर आज मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। और क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच एडिलेड में। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।